ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत आकांक्षाओं से भरा हुआ है और भारत की युवा शक्ति मोबिलिटी को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मोबिलिटी एक्सपो का दायरा काफी बढ़ गया है।
आज का भारत एस्पिरेशन से भरा हुआ है, यही एस्पिरेशन हमें भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दिखाई देती है। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के ऑटो उद्योग में पिछले वर्ष 12% की वार्षिक वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया पहल की शक्ति से देश के ऑटो उद्योग की वृद्धि को समर्थन मिल रहा है। ये देश का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है। इसका विषय है सीमाओं से परे भविष्य की ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला का सहनिर्माण। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में सभी आगंतुकों के लिए 19 से 22 जनवरी तक प्रवेश निःशुल्क होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक्स में 2 पदक विजेता मनु भाकर, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार पिछले 4 वर्ष में खिलाड़ियों के शानदार और सर्वाधिक असाधारण खेल प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। एथलीट ज्योति यरराजी और अन्नू रानी, मुक्केबाज नीतू और स्वीटी, पैरा तीरंदाज राकेश कुमार सहित 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एथलीट सुच्चा सिंह और पैरा तैराक मुरलीकांत पेटकर को लाइफटाइम अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि बेंगलुरु में अमेरिका का नया वाणिज्य दूतावास भारत तथा अमेरिका के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने और विस्तार के लिए आवश्यक है। आज बेंगलुरु में नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों में खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष क्षेत्र, रक्षा, ड्रोन और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। ये मुठभेड़ कल बीजापुर जिले के पामेट और बासागुड़ा क्षेत्र में हुई। पुलिस ने बताया कि ये पीएलजीए बटालियन नंबर 1 और सेंट्रल रीजनल कमेटी के नक्सली थे। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से नक्सलियों के हथियार भी बरामद किए गए। मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। मुठभेड़ में 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। घायल जवान खतरे से बाहर हैं। महाराष्ट्र में पुणे नाशिक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज एक दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। घटना सुबह नारायण गांव के पास हुई। पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक पंकज देशमुख ने बताया कि एक वैन नारायण गांव की ओर जा रही थी, तभी एक टेम्पो ने उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वो सड़क किनारे खड़ी खाली बस से टकरा गई। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। मुंबई पुलिस ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के संबंध में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। सैफ पर हमले के 24 घंटे बाद ये कार्रवाई की गई। पुलिस बांद्रा थाने में संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। कल लीलावती अस्पताल में सैफ की शल्य चिकित्सा की गई। वे अभी अस्पताल में हैं, लेकिन खतरे से बाहर हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। अब तक कुल 841 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 10 जनवरी को शुरू हुई थी। सरकार ने महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र के परेड ग्राउंड में 100 बिस्तरों वाला केंद्र अस्पताल स्थापित किया है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज कोहरा छाया रहा, जिससे पूरे क्षेत्र में दृश्यता कम रही। कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 27 रेलगाड़ियां और कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। मेलबर्न में भारत के रोहन बोपन्ना और चीन की शुआई झांग की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मिक्स डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।